आगे कुछ अध्याय में गिनाया जाएगा कि हाय हाय कार्तवीर अर्जुन किसका पुत्र था, बहुत ही समृद्ध और यह कहिए प्रभाव में सबसे श्रेष्ठ राजा हुआ सहस्रार्जुन, उसका नाम भी अर्जुन था, लेकिन उसकी 1000 भुजाएं थी इसलिए उसका नाम हुआ सहस्र अर्जुन, सहस्रार्जुन या सहस्रबाहु भी कहते हैं, वह एक यादव था। तो भगवान ने हाय हाय कुल का विनाश किया और इतना ही नहीं त्रिसप्त कृतव यमान चक्र निक्षत्रियां महीम, त्रिसप्त सत्री के 21 बार उन्होंने इस पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया, बहुत मारा, बहुत विनाश किया क्षत्रियों का। दुष्टम क्षत्रम भूओ भारम अब्रह्मण्यम अनि नसत रजस्तमो वृतमहन फल्गुन्यपि कृते नसे। उस समय क्षत्रिय इस पृथ्वी का बहुत बड़ा भार हो गया था, क्योंकि सारा पावर सारी शक्ति क्षत्रियों के हाथ में रहती थी राजाओं के, इसलिए वे वेद के पथ को छोड़कर मनमाना आचरण कर रहे थे, वो पृथ्वी के भार हो गए थे। तो भगवान ने एक छोटे से अपराध का बहाना बना करके विपुल मात्रा में क्षत्रियों का विनाश किया, एक छोटा सा अपराध के कारण। दुष्टम क्षत्रम भूओ भार अब्रह्मण्यम, और वे क्षत्रिय उस समय के वेदों के विरुद्ध चलते थे, ब्राह्मण संस्कृति को स्वीकार नहीं करते थे, अपने को बहुत बड़ा मानते थे। अब्रह्मण्य का अर्थ होता है ब्राह्मणों की उपेक्षा करना और वेद शास्त्र की आज्ञा को न मानना, उच्छृंखल और मनमाना आचरण करने लगे थे, रजोगुण और तमोगुण से घिरे थे। अतः फल्गुन अपि कृते नसि, थोड़ा ही अपराध करने पर भी उस अपराध का बहाना बनाकर भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। कुछ विद्वान कहते हैं कि उनकी माता अपने पति के विरह में 21 बार छाती पीट पीट करके विलाप की थी, इसीलिए भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, बारी बारी से किए थे पति के विरह में। तो जो भी हो, यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अपराध थोड़ा था लेकिन फिर भी भगवान ने क्षत्रियों का विनाश किया। महाराज परीक्षित इस पर प्रश्न कर रहे हैं, किम तदंगो भगवतो राजन्य रजितात्म भी कृतम जेन कुलम नष्टम क्षत्रियाणाम अभीक्षण सह। हे भगवान, हे गुरुदेव, उस समय अजितात्मा राजाओं ने क्षत्रियों ने कौन सा अपराध किया था परशुराम जी का कि उन्होंने लगातार क्षत्रियों का विनाश किया इस पृथ्वी पर, जबकि भगवान अवतार लेते हैं जनरली तो क्षत्रियों की रक्षा करते हैं, क्षत्रिय वंश में भी अवतार लिए हैं, जैसे जदु वंश में अवतार लिए तो उन्होंने जादवों को क्षत्रियों को सब तरह से पोसा, उनके सामने सारे विश्व को झुका दिया, और पूर्व महाराज के वंश में युधिष्ठिर आदि को उन्होंने राजा बनाया, और भगवान श्री राम के रूप में जब वे हुए तो उन्होंने बहुत से क्षत्रियों का पोषण किया, क्योंकि क्षत्रियों को शिक्षा देना और उनके द्वारा जगत की रक्षा करना यह भगवान का कार्य है। भगवत गीता में वे कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ यह परंपरा से राजर्षियों में आ रहा है, भगवान ने यह नहीं कहा कि यह ज्ञान ब्राह्मणों में आ रहा है, राजर्षियों में यह ज्ञान आ रहा था, लेकिन बहुत काल बीत गया इसलिए परंपरा नष्ट हो गई, मैं पुनः परंपरा प्रारंभ कर रहा हूँ। तो जो प्रभु क्षत्रियों से इतना प्रेम करते हैं, इस पृथ्वी पर उनको समृद्ध करते हैं, उनमें शक्ति देते हैं और उनके द्वारा जगत का पालन करते हैं, वे प्रभु अकस्मात एक छोटा सा बहाना करके और क्षत्रियों का इतना बड़ा विनाश किए, तो अवश्य एक जिज्ञासा का विषय, ऐसा क्यों किया भगवान ने, महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। कृतम जेन कुलम नष्टम, यहाँ तक कि क्षत्रियों के कुछ कुल को तो पूरा पूरा ध्वस्त कर दिया भगवान ने, क्यों किया ऐसा, सुनिए कथा क्या अपराध किया था उस समय कुछ क्षत्रियों ने, थोड़ा भले वे पापी थे, पृथ्वी के भार थे, लेकिन भगवान परशुराम का उन्होंने कौन सा अपराध किया, इस कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। जिस क्षत्रिय ने अपराध किया था उसकी कथा पहले कह रहे हैं, और अपराध के पहले सुखदेव गोस्वामी यह बता रहे हैं कि उसमें दर्प आ गया था, सहस्रबाहु अर्जुन में दर्प आ गया था, उसके दर्प का कारण था उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति, बल की प्राप्ति इत्यादि। बल कैसे प्राप्त हुआ था और किस तरह वो दर्प में आ गया था इसका वर्णन करते हैं। श्री शुकवाच हयानाम अधिपतिर अर्जुन क्षत्रिय सभा। हय वंश में एक बहुत बड़ा राजा हुआ जिसका नाम था अर्जुन, सहस्रार्जुन हम लोग कहा करते हैं। क्षत्रिय सभा, समस्त क्षत्रियों में वह सर्वश्रेष्ठ था। यहाँ ऋषभ शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, केवल राजा के लिए ये शब्द नहीं दिया गया है, वास्तव में अनेक गुणों में वह समस्त क्षत्रियों में शिरोमणि था। दत्तम नारायणस्यांशम आराध्य परिकर्म भी, भगवान नारायण के ही अवतार दत्तात्रेय जी की उसने आराधना की। किस प्रकार की आराधना, परिकर्म भी, भगवान की सेवा किया और भगवान प्रसन्न होकर के, दत्तात्रेय जी प्रसन्न होकर के उसको 1000 बाह दे दिए। हम तो नहीं समझते हैं कि इस समय एक भी कोई अवतार या साधु और जोगी है जो किसी को 3 हाथ भी दे दे, बल्कि किसी के हाथ एक कट गए हैं तो 2 भी नहीं कर सकता है। देखिए भगवान की शक्ति, उसने चरण दबाया उनका, या उनका उनके आश्रम के पास, आश्रम नहीं जहां वो लेटते थे भगवान दत्तात्रेय, वहां झाड़ू लगा दिया, जाकर के उनके लिए पानी भर करके लाया, पृथ्वी का सम्राट हो करके भी भगवान के चरणों की सेवा किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा तुमने हाथ से मेरी सेवा की है तो इसीलिए तुमको 1000 बाह मिले। और भगवान ने कहा बस फटाफट बाहें निकाल आई, तत्काल 1000 बाह। यही है भगवान की शक्ति। परिकर्म शब्द पर ध्यान दीजिए, परिकर्म का अर्थ होता है सेवा, देह से सेवा, इसको परिचर्या कहते हैं। देह से भगवान की सेवा करनी चाहिए, मंदिर मार्जन, श्री विग्रह की आराधना, ये देह से किया जाता है, लेकिन जिनका भगवान निराकार है उनका तो देह बेकार चला जाएगा, अब न तो श्रृंगार कर पाएंगे, न माला पहना पाएंगे, न मुकुट पहना पाएंगे, और उनकी आंखें भी बेकार चली जाएंगी। भगवान को तो देखेंगे नहीं, देखेंगे यही जाल दुनिया का। तो सहस्रबाहु अर्जुन ने अपने देह से, अपने हाथ से भगवान की सेवा किया था बहुत प्रकार से, इसलिए उनकी कृपा से 10 शतम बाहुन लेभे, 100 बाह प्राप्त। किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है कि 1000 बाह, एक तरफ 500, एक तरफ 500, कैसे वहां टिकी हुई थी उसके शरीर में। उसका शरीर भी इसी अनुपात में बहुत विशाल था और विशाल विशाल भुजाएं। भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति कभी भी घाटा में नहीं पड़ सकता है, भगवान सबसे अधिक संवेदनशील व्यक्ति हैं। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, भगवान का ऐसा स्वभाव। वास्तव में कोई उनको यदि थोड़ा भी देता है तो वे कई गुना लौटा देते। सहस्रबाहु अर्जुन ने सेवा किया भगवान की और वे उसको 1000 बाह दिए। और क्या क्या दिए, दुर्धर्षत्वम अरातिसु, अरातिसु मतलब शत्रुसु, शत्रुओं में दुर्धर्षत्वम, कोई भी शत्रु उसको परास्त नहीं कर सकता था। भगवान ने आशीर्वाद दिया तुम सबको अपने बस में रखोगे, तुमको कोई भी पराभूत नहीं कर सकता, परास्त नहीं कर सकता। अव्याहतेन्द्रिय औज श्री तेजो वीर जयशो बलम, और अव्याहत इंद्रिय, इंद्रियां जैसे हैं आंख, कान, नाक, त्वक, पैर, हाथ इत्यादि, ये अव्याहत होंगे, करोड़ों करोड़ों वर्ष तक इनकी शक्ति नष्ट नहीं होगी, भगवान ने आशीर्वाद दिया। आंख में देखने की शक्ति सदा बनी रहेगी, बहुत पावर। और ऐसा नहीं कि आप ये समझिए कि हम लोगों की जैसे आंखें हैं थोड़े दूर तक देखती हैं ऐसी, भगवान ने इतनी शक्ति दिया कि वो करोड़ों योजन देख सकता था और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को देख सकता था। ऐसा नहीं है कि अब उसको आंख में आई ड्रॉप डालना पड़ता होगा और कहीं ऑपरेशन कराना पड़ा होगा, कभी नहीं। इसी तरह से कान, कान की शक्ति बनी रही, हाथ की शक्ति, पैर की शक्ति, सब अव्याहत, काल का कोई प्रभाव नहीं था। और ऊर्जा, स्फूर्ति, देह में इंद्रियों में कार्य करने की क्षमता। और श्री, श्री का अर्थ है धन, धन और वैभव। भगवान ने कहा तुम्हारा धन बढ़ता जाएगा दिनों दिन, कभी घट नहीं सकता है। और तेज, तेज का अर्थ है दूसरों को अपने वश में कर लेने वाला प्रभाव। वीर्य, वीर्य का अर्थ है वीरता, वीर शब्द से वीर शब्द बनता है, वीरता, युद्ध में अद्भुत जयशीलता। और यश, यश का अर्थ है भगवान ने कहा तुम बहुत बड़ा बड़ा कर्म करोगे, तुम्हारा यश सारे जगत में फैलेगा। और बलम, शारीर बलम। जोगेश्वरत्वम, और जोगेश्वरत्व, जोगेश्वर भगवान कृष्ण को कहा जाता है, जो अद्भुत अचिंत शक्तियों, शक्तियां तुम्हारे अधिकार में रहेंगे। और ऐश्वर्यम गुणा जत्रा अणिमादर, और ऐश्वर्य नियंत्रण, जिसमें अणिमा आदि सिद्धियां रहती हैं, छोटा से छोटा हो जाना, पानी पर चलना, आकाश में चलना, वायु के सहारे चलना, बड़ी से बड़ी वस्तु बना देना और शत्रुओं के बीच से अकस्मात अंतर्हित हो जाना, छिप जाना, दूर की बातों को पकड़ लेना, अंतर्जामित्व, दूसरे के हृदय में प्रवेश करके उनकी बात को जान लेना, इस प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दिया था इसको। तो ये सारे गुण पा करके, सारी विशेषता पा करके, चचार अव्याहत गतिर लोके सुपवनो जता, वो संपूर्ण ब्रह्मांड में जहां इच्छा करती थी घूमता रहता था। परंतु एक इसमें दोष आया, इतना बड़ा बल था, नियंत्रण शक्ति थी, सब कुछ था, लेकिन सदा स्त्रियों के साथ घुमा करता था। दर्प बढ़ गया था, अभिमान बढ़ गया था, संपूर्ण ब्रह्मांड का ही एक प्रकार से राजा था, तो लोकों में जनता के बीच वो पवन की तरह घूमता था, जैसे पवन कहीं भी घूम सकता है, इसके लिए नो एडमिशन या प्रवेश निषेध नहीं, पवन सब जगह जा सकता, उस तरह से वो कहीं भी जा सकता था। और पवन जैसे अलक्षित जाता है, देखने में नहीं लगता है, उस तरह से किसी भी समाज में कहीं भी ये जनता की बात को जानता था, प्रवेश कर सकता था। इसके पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। एक बार परम सुंदरी स्त्रियों के साथ रेवा नदी के, नर्मदा जी के जल में विहार कर रहा था, जबलपुर के पास, वहीं पर माहिष्मतीपुर है, आज भी उसका अवशेष। रेवाम्भसी मदोत्कट, मद से उत्कट, उत्कट मद इसमें था, अर्थात अतिशय अभिमान, और रेवा नदी में विहार कर रहा था, क्रीड़न। किनके साथ घिरा था? स्त्री रत्नई, बहुत सी स्त्रियां थी, स्त्री रत्न कहा जा रहा है कि संसार की सबसे श्रेष्ठ सुंदरियों के साथ जल विहार कर रहा था, और वैजयंती माला पहना था। वैजयंती माला का अर्थ है पांच प्रकार के रंगों वाले फूलों से गुथी हुई माला। जल में स्नान कर रहा था, विहार कर रहा था, उसमें माला पहना था। तो ऐसे क्रीड़ा करते करते उसको यह संवाद मिला कि रावण इसको नीचा दिखाने के लिए वो भी बहुत से स्त्रियों का झुंड लेकर के आया था नर्मदा जी के किनारे, और वो सोच रहा था कि मैं दिखाऊंगा, अपनी शान दिखाऊंगा। वो सुना था कि सहस्त्रबाहु बहुत बलवान वीर है, तो अपना ऐश्वर्य दिखाने आया था। तो नर्मदा जी के किनारे अपना शिविर डाला था, कुछ सेनाएं थी, राजकीय परिवार था, सब था। तो इसको पता लग गया सहस्रबाहु अर्जुन को, ये नदी के नीचे स्नान कर रहा था। तो इसने अपने 1000 बाहों से डैम बना दिया नर्मदा जी, बांध बना दिया, और इसलिए कि पानी रुकेगा और पानी ऊपर चढ़ेगा तो रावण की सारी सेना बहने लगी, स्त्रियां डूबने लगेंगी, और इसके बाद तब वो मेरे पास आएगा, तब बताऊंगा उसको। क्रीड़ा करने में, जल विहार करने में अपना हाथ फैलाया, बस बांध तैयार। आजकल किसी साधारण नदी पर बांध बांधना हो तो कई करोड़ अरब रुपया लग जाता है, फिर भी नहीं बनता। और उसको बांध तैयार करने में 1 मिनट भी नहीं लगा, हाथ फैलाया बांध तैयार। तो जब विरुद्ध मार्ग से प्रति स्रोता सरी जलई, जब सरिता का जल बढ़ने लगा ऊपर, तो विप्लावितम स्वशिबिरम, रावण का सारा शिविर डूब गया, विप्लावित हो गया, प्लावित नहीं विप्लावित, विशेषण प्लावित, एकदम डूब गया। स्त्रियां भागी अपना अटैची वगैरह लेकर के, आपने जो भी सामान था भागी, हाय हाय ये क्या होगा, अकस्मात में बरसात में कुछ कैसे बाढ़ आ गई, लोग भागी। रावण को पता लगा ये कौन किया, कौन मेरी आज्ञा के बिना बांध बना दिया। तो आया और स्त्रियों के सामने सहस्रबाहु को गाली देने लगा, क्या तुम जानते नहीं हो मेरा नाम दशानन है, रावण है, मेरा नाम नहीं सुना है, तुम ऐसी गलती कर रहे हो, आकर के डांटने लगा। तो वो तो कुछ भी चिंता नहीं किया सहस्रबाहु, जैसे किसी सिंह के सामने आकर के सियार बोलने लगे तो सिंह केयर नहीं करेगा, छोड़ेगा उस पर, ये कोशिश नहीं करेगा कि मैं सियार का वध कर दूं, बल्कि ये संवाद फैले कि एक सिंह ने सियार का वध किया है तो इसमें सिंह की बेइज्जती होगी, ऐसे काम क्यों। अरे बड़े गजराज को, हाथी को मारे तो ठीक है, सियार को क्यों मारा। इसलिए सहस्रबाहु तो ऐसा माना कि कोई सियार तट पर हुआ हुआ कर रहे, 10 सिर वाला सियार आ गया, ऐसा माना। लेकिन फिर भी ये भो भो सियार जैसा बकता रहा, गाली देता रहा, तो निकला और निकला और अपने एक बांह से इसका मस्तक पकड़ लिया, गला पकड़ लिया एक बांह से और उसे टांग लिया। नहीं तो 999 बांह खाली थे, एक बांह से रावण को पकड़ा है और कहा कि बोलो अब, अब क्या, अब तो छोड़ छोड़ मर गया, चिल्लाने लगा। तो इसके बाद उसने कहा दूसरे सैनिकों को कि इसको बांध करके ले चलो और नगर में महिष्मतीपुर में जितने भी हमारे बच्चे हैं ये 10 सिर वाला बानर जैसा इससे के साथ खेलेंगे, तो बांध कर ले गए। और मंदोदरी आदि स्त्रियां बिलाप करती रही, हाय 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 हाय, उनको कह दिया जाओ तुम लोग अपने घर जाओ, अभी जाएगा महिष्मतीपुर में। तो ले गए, बांध करके ले गया था। लेकिन बाद में उसके पिताजी को पता लगा रावण के कि मेरा पुत्र इस तरह से बांध करके लाया गया है, तो वे गए और सहस्रबाहु से विनती करके छोड़वा दिए, छोड़ दीजिए गलती किया, माफ कीजिए। ये प्रताप था उसका। ये रावण के सामने इंद्र आदि देवता आते नहीं थे, थर थर कांपते थे, और ऐसा रावण एक बानर की तरह पकड़ लिया गया, यह प्रताप था सहस्रबाहु का। गृहीतो लीलया स्त्रीणाम समक्षम कृत किल विषम, रावण की स्त्रियों के सामने पकड़ लिया सहस्रबाहु ने, कृत किल विषम, क्योंकि उसका पराभव करना चाहता था। और माहिष्मत्यम समिरुद्धो मुक्तो जन कपीर जत, कपी जैसा पकड़ लिया और बाद में मुक्त छोड़ दिया कि जाओ। यह तो इसके विजय का वर्णन किया गया, इसके बल का वर्णन किया गया, लेकिन ऐसा महान विजेता भी भगवान के सामने कुछ भी नहीं, भगवान ने कुल्हाड़ी से इसको मार दिया, भगवान इसको 100 भुजा दिए थे और भगवान फिर मार भी दिए। सब मिला करके वास्तव में भगवान में ही सब कुछ, और किसी में कोई दम नहीं। भगवान दत्तात्रेय ने सब दिया था, भगवान परशुराम ने उसे समाप्त कर दिया। सारा बल बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम तेजस तेजस्विनामहम, मैं तेजस्वियों का तेज हूँ, बलवानों का बल मैं हूँ, भगवान कहते। देखिए भगवान दत्तात्रेय के केवल आशीर्वाद से सबसे बड़ा धुरंधर वीर हुआ, और भगवान जब मारने आए तो क्षण भर में मार दिए, वो कथा बाद में आएगी। परशुराम जी का इसने क्या अपराध किया था उस कथा को कह रहे हैं। स एकदा तुम मृगयाम विचरन विपिने बने जदृच्छयाश्रम पदम जमदग्ने रूपाविशत। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन वन में मृगया कर रहा था, विचरण कर रहा था, तो उसके साथ बहुत से सैनिक थे, कुछ मंत्री थे, नौकर चाकर भी थे। तो मृगया करते करते वो विपिने बने, विपिन का अर्थ है जहां प्रवेश करना दूसरों के लिए कठिन है, ऐसे वन में प्रवेश किए। वन का विशेषण है विपिन, या गहने बने जो भी, गहन वन में प्रवेश किया। प्रवेश किया तो जद्रिच्छया दैवेच्छया, दैव की ऐसी इच्छा थी, या ईश्वर का विधान कहिए अथवा अर्जुन का सहस्र अर्जुन का कर्म कहिए, कर्म फल, जमदग्नि जी के आश्रम पर आया। तो जमदग्नि जी अपना सौभाग्य माने कि इतने बड़े राजर्षि हमारे आश्रम पर आए हैं, तो उन्होंने खूब अच्छी तरह से स्वागत किया महाराज सहस्रबाहु का। यह नियम है कि कोई किसी के घर पर जाए अतिथि तो उसका स्वागत करना चाहिए, और उसमें भी राजा अतिथि बनकर आया है, क्यों नहीं उसका आतिथ्य किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। जमदग्नि जी ने खूब अच्छा स्वागत किया राजकीय ढंग से। तस्मै स नरदेवाय मुनि अरहण महरत ससैन्य माल्यवाहाय हविष्मत्या तपोधनः। जमदग्नि जी जो भगवान परशुराम के पिताजी थे, उन्होंने खूब स्वागत किया, क्यों कि नरदेवाय, राजा मनुष्यों में ईश्वर का स्वरूप माना जाता है, ईश्वर का अंश माना जाता है नरदेव, इसीलिए मुनि ने अपना कर्तव्य समझा। वे अर्हणम आहरत, बहुत पूजा किए, स्वागत किए। ससैन्यम ससैन आमात्य बाहाय, तो महाराज सहस्रार्जुन के संग में जितने भी सैनिक थे सबको भोजन मिला, आवास मिला, सब तरह से सेवा हुई, और मंत्री आदि सबको, और बाहाय वाहन हाथी घोड़े आदि सबके लिए घास भूसा जो भी चाहिए वो सब मिला। एक एक सैनिक को एक एक फर्स्ट क्लास का फ्लाइट दिया उन्होंने, ये वर्णन है। इस सत्य राजकीय स्वागत हुआ उस वन में, जबकि अपने आप वे ऋषि एक कुटिया में रहते थे, परंतु राजा का स्वागत करना हुआ तो उन्होंने बहुत विविध ढंग से स्वागत किया। बहुत सुंदर सुंदर भवन बनाए, क्षण भर में बन गए, और एक एक भवन में दास दासी हजारों हजार सेवा करने लगे, और तुरंत ही बसंत ऋतु उत्पन्न हो गया, त्रिविध समीर बहने लगा, सुंदर सुंदर भवन, और वहीं पर कामधेनु कल्प वृक्ष सब लग गए। तत्काल सुखदेव गोस्वामी कह रहे क्योंकि तपोधन, तपस्या के धनी, तपस्या ही धन है ब्राह्मणों का, मुनियों का, तो उनके पास हविष्मति थी, घी देने वाली दूध देने वाली गाय कामधेनु गाय, तो उस गाय की कृपा से कामधेनु की कृपा से, और तपोधन स्वयं तपस्या के धनी है, उन्होंने अपने योग बल से तप बल से वहां पर बहुत सा अपार्टमेंट खड़ा कर दिया, बहुत भारी भारी बिल्डिंग है, मतलब ऊंची ऊंची नहीं, सबके लिए अलग अलग बंगला, सभी सैनिकों के लिए, राजा के लिए, तो राजभवन जैसे सब कुछ कर दिया। इस प्रकार की कथा रामचरितमानस में भी है, जब भरत जी प्रयागराज पहुंचे तो उनका स्वागत किया भरद्वाज जी ने। भरद्वाज जी के हृदय में बहुत खुशी व्याप रही थी कि हमारे प्रियतम प्रभु के छोटे भाई हैं, तो उनका वो स्वागत करना चाहते थे। भगवान जब उनके आश्रम में आए थे तो उस समय उनके साथ तो केवल लक्ष्मण और सीता जी थी, लेकिन भरत जी जब इनके आश्रम में आए तो पूरा अयोध्या का समाज था। सैनिक भी चल रहे थे, रानियां थी और समस्त अयोध्यावासी थे। बहुत बड़ा समाज था, हजारों हजारों लाखों लोग साथ में चल रहे थे। और सब जब मिलने आए भरत जी इस महाऋषि से, भरद्वाज जी से, तो सबके मन में इच्छा हुई कि हम भी दर्शन करेंगे, हम भी दर्शन करेंगे, तो सब चले गए। तब भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों को आज्ञा दिया कि जाओ वन से कंद मूल फल लेकर के आओ सिद्ध। लेकिन अब वो दो चार चेला कंद मूल फल कितना जुटा सकते थे। तब उन्होंने सोचा कि अब मेरी तपस्या किस दिन काम आएगी, इतना सुंदर अतिथि कब मुझे मिलेगा। तो उन्होंने अपनी योग शक्ति को, तपस्या के बल को लगाया और सारी सिद्धियां हाथ जोड़ जोड़ करके खड़ी हो गई सामने। समस्त सिद्धियां, भवन बनाने की कला या कोई भी ऋतु प्रदर्शित करने की, सुख की सामग्री उत्पन्न करने वाली सारी ऋतु, सब समाज सद सज सिधिपल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाए। ऐसी सिद्धियों ने काम किया, ऐसा सुख उपस्थित कर दिया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग घर, अटैच्ड बाथरूम और सब कुछ, और सेवक दासी कल्प वृक्ष, खूब सुंदर सुंदर गद्दा, सोने के पलंग, हाथी दांत के बने हुए पलंग, आसन और सब एसी रूम उन्होंने उपस्थित कर दिया सबके लिए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि विधि विस्मय दायक, एक शब्द लिखे, विधाता ब्रह्मा जी ने जब देखा तो वो भी विस्मित हो गए कि अरे बाप रे बाप, इतनी तो शक्ति मुझ में रचने की नहीं। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, प्रत्येक रूम के पास, प्रत्येक बंगला के पास सुर भी, सुर सुर भी मतलब देवताओं की गाय और देवताओं का वृक्ष, सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। उनको देख करके सची को इच्छा हो जाती थी, इंद्र की पत्नी को, कि वो हमको कब ऐसा भवन मिलेगा, और इंद्र को भी इच्छा होती थी। उस सपने में भी वो सुख नहीं था, यद्यपि भरत जी और उनका जो सारा समाज था उस सुख से लुब्ध नहीं हुआ, वो लोग सब तो राम के विरह में थे, इसीलिए वो लोग उस सुख को स्वीकार नहीं किए, केवल अकोमोडेशन स्वीकार किए, केवल रहे। लेकिन ऐसा उपस्थित भरद्वाज जी ने कर दिया, तो ये तपस्या का धन होता है। यद्यपि ऋषि मुनि अपने योग बल का प्रयोग भोगों के लिए कभी नहीं करते हैं। जमदग्नि जी भी एक ऐसे ही महान पुरुष थे जो बहुत अभाव में रहते थे, तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, लेकिन अपने लिए कोई आसन नहीं, भवन नहीं और कोई सुख की सामग्री नहीं इकट्ठा किए थे। परंतु जब राजा उनके आश्रम पर गए तो राजा का स्वागत उन्होंने राजकीय स्तर से किया, सबके लिए भवन, सबके लिए पंखा, बेड, आसन और सेवक सती, और भोजन भी उन्होंने अपने तपस्या के बल से तत्काल अमृत उपस्थित कर दिया, या फर्स्ट क्लास का खीर, गुलाब जामुन, या जो कुछ भी राजा खा सकता उपस्थित किया इस तरह से। तो जब राजा का स्वागत हो गया तो राजा तो चकित हो गया कि अरे बाप रे, तो हमारे पास भी इतना धन नहीं, मैं सप्त द्वीपवती पृथ्वी का राजा हूं, लेकिन सवीर तत्र तद दृष्टवा आत्म स्वर्जातिशायनम, आत्म ऐश्वर्य अतिशायनम, अतिक्रम्य वर्तमानम, अतिक्रम्य वर्तमानम। राजा अर्जुन ने देखा कि मेरे पास जो धन है उसे कई गुना धन इस ऋषि के पास, इस ब्राह्मण के पास, अब देखिए इसका काल आने लगा। अरे खा लिया, स्वागत हो गया, इसको जाना चाहिए था धन्यवाद दे करके, लेकिन अब पता लगाने लगा कि इसका ये धन कहाँ से आ रहा है, इनकम टैक्स बांधेगा अब काल इसके सिर पर मंडराने लगा। देख रहा था, पहले आया तो देखा कि कुछ नहीं है, चटाई पड़ी हुई है, उसी पर ऋषि बैठा है और भगवान का नाम जप रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ में यह बात आ गई कि ये इसके तपस्या का प्रभाव है, लेकिन वह ऋषि वह ब्राह्मण उस तपस्या का प्रयोग अपने सुख के लिए नहीं किया था। राजा देख लिया कि तपस्या का प्रभाव है, इसने मेरा स्वागत किया और तपस्या से ही इसको एक काम धेनु प्राप्त है, काम धेनु की कृपा से इसने सब जुटा दिया। तो उसके मन में अब ऋषि ने जो आदर किया था जमदग्नि जी ने, उसके प्रति कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ, वो तृप्त नहीं हुआ उतना बड़ा आदर पाकर के, क्योंकि अग्निहोत्रम साभिलाषा, उसके भीतर अब उस काम धेनु को पाने की लालसा हो गई। उसने सोचा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये गाय ले चलना चाहिए, ये जब मेरे पास हो जाएगी तब मैं धनी माना जाऊंगा, तब मेरे पास ऐश्वर्य माना जाएगा। जैसे आपने सुना उसको भगवान दत्तात्रेय ने कितना ऐश्वर्य दिया, सब कुछ दिया, लेकिन किसी भी मनुष्य को जब किसी चीज की अभिलाषा हो जाती है तो उसके बिना वो सुख देखता ही नहीं, उसे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, यह मिल जाएगा तब हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। यही मनुष्य का अविवेक है, अभाव है। अरे क्या कमी थी सहस्रबाहु अर्जुन को, कोई कमी नहीं थी, सब कुछ भरा पड़ा था, लेकिन उस गाय में उसकी अभिलाषा हो गई कि यह मेरे घर पर रहनी चाहिए। यही है मनुष्य का अविवेक, अज्ञान। जितना ही धनी व्यक्ति होता है, जितना ही पावर वाला होता है, सोचता है कि सारा धन मेरे पास रहे। अरे भगवान ने धन का वितरण किया है, किसी गरीब के यहाँ कोई धन है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए, ठीक है बेचारा जिए खाए जैसे रहे। गया वहां भोजन भी किया, ऐश आराम भी किया, और इसके बाद अब मन में हो गया कि गाय मांगना चाहिए, तो मांगा। महाभारत में कथा है कि उसने मांगा जमदग्नि जी से कि आप इस गाय का ठीक ठीक उपयोग करना नहीं जानते, मैं राजा हूं और राज्य में प्रजा का जो भी धन होता है उस पर राजा का अधिकार होता है, तो वास्तव में तो ऐसे नियम के अनुसार मेरी गाय है क्योंकि मैं राजा, और आप इससे कोई लाभ नहीं उठा रहे, बेकार आपके यहां पड़ी हुई है, इसलिए इस गाय को दे दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। लेकिन जमदग्नि जी ने कहा नहीं, यह नहीं हो सकता। तब इसने कहा नहीं हो सकता, तब कुछ जादवों को, कुछ सैनिकों को लगाया, जबरदस्ती ले चलो गाय को, साधु मांगने पर नहीं दे रहा, जबरदस्ती ले चलो। अब काल इसके निकट बिल्कुल आने लगा, ऐसा कहा गया है कि मृत्यु किसी को डायरेक्ट हाथ में हथियार लेकर के मारने नहीं आता है, वो बुद्धि खराब कर देता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का जब समय आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। और उसने मनुष्यों को लगाया कि ले चलो, इसको बहुत बड़ा दर्द था। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को इस उदाहरण से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि जितना भगवान ने दिया है उसमें संतोष करना चाहिए। बताइए, राजा था, सारी दुनिया इसकी थी, लेकिन इसके मन में था कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो एक साधु के पास बेचारी गाय थी, वे सब तपस्वी थे, उनके पुत्र थे बहुत से, 8 पुत्र थे, तो पुत्र थे, पुत्रों का पालन उसी गाय से हो रहा था, प्रतिदिन घी देती थी, दूध देती थी, घी बनता था तो हवन करते थे, और कोई ऐसा नहीं था कहीं 2-4 बोरा सीमेंट मंगा करके और कोई पक्का बना लिया, वही घास फूस की झोपड़ी थी, भजन करते थे, भगवान का स्मरण करते थे, वेद पढ़ते थे, स्वाभाविक ही ब्राह्मण की वृत्ति में थे। तो भगवान की कृपा से इनको गाय मिली थी, उसी गाय के बल से सब करते थे, परंतु उसका दर्प देखिए, उसका अज्ञान, उस राजा, वो सोचा कि नहीं, ये गाय हर ले चलना चाहिए। तो क्या जितनी भी अच्छी वस्तुएं हैं उनके भोक्ता तुम रहोगे और कोई नहीं रहेगा, यह अभिमान आया। दूसरों के कष्ट को समझना चाहिए, यही तो महानता है। दूसरे व्यक्ति कष्ट में है उसको समझना चाहिए। हमने देखा है वृंदावन में, मुझे याद आ जाती है बात, कोई व्यक्ति रिक्शा खींच रहा है और उस पर दो के बदले तीन आदमी बैठे हुए हैं और रिक्शे वाले से कहते हैं, गर्मी के दिन में पसीना छूट रहा है, कहते हैं तुम तो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हो, चलो भाई बहुत जरूरी काम है। यदि कोई व्यक्ति आता कह देता कि तुम खींचो जल्दी जल्दी ले चलो, तब क्या होगा? कि दूसरे के भी कुछ आवश्यकता है, दूसरे के भी बच्चे हैं, उसे भी भोजन चाहिए, आवास चाहिए, आराम चाहिए, इस पर तो ध्यान देना चाहिए ना। लेकिन जब व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है तो दूसरों के सुख पर ध्यान नहीं देता। और शास्त्र कहता है आत्मनः प्रतिकूल यानी परेशान न समाचरित, जो अपने प्रतिकूल हो उसे दूसरे के प्रति न करे। जैसे हमको भूख लगती है, हमको जाड़ा लगता है, कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, भवन चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो ऐसे दूसरे को भी तो आवश्यकता पड़ती है। तो संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य इसके पास था फिर भी कमी देख रहा था, और जमदग्नि जी के पास केवल एक गाय थी उसको भी ले जाना चाहता था, जो उन्होंने नहीं दिया तो दर्पात बलात् ले गया। गाय नहीं जा रही थी, क्रंदन थे, गाय रो रही थी, नहीं जा रही थी, तब इसने कहा बछड़े को भी ले चलो, बछड़ा भी खोल दिया, बाछी थी, तो कम से कम उसको भी छोड़ दिया होता तो वो भी बड़ी होकर के कामधेनु हुई होती। लेकिन ये तो पूरा पूरा उनका धन लेकर के चला। तो गाय रंभाती हुई जा रही थी, रोती हुई जा रही थी, बछड़ा जा रहा था, बलपूर्वक ले गया। देखिए कितना गलत काम किया, इतने बड़े तेजस्वी ऋषि के पास जो अवलंबन थी उनका सर्वस्व ले गया, वे कुछ भी नहीं किए। चाहते जमदग्नि जी तो अपने साप से, अपने कठोर वचन से उसको भस्म कर सकते थे, इतनी शक्ति उनमें थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, वे सह लिए। कुछ देर के बाद भगवान परशुराम आए, वे वन में चले गए थे किसी कार्य से। वह दोपहर के बाद वे आए, अथ राजनी निर्जाते राम आश्रम आगत। जब राजा सहस्त्रबाहु अपने नगर में चले गए तब भगवान परशुराम आए आश्रम पर, और आते ही वे समझ गए कि यहाँ मनुष्यों का बहुत बड़ा समाज आया था, खा करके पत्तल फेंका गया होगा इधर उधर सब, समझ में आ गया कि यहाँ कुछ जमात आया। पूछे और यह भी वर्णन किया गया है कि उस कामधेनु गाय के लिए वे घास काट करके लाए थे सिर पर। तो सबसे पहले वे चले घास डालने के लिए, पूछे अपने माँ से कि गाय कहाँ गई, तो उसने कहा कि राजा जी आए थे, सहस्रबाहु आए थे और वे ले गए। तो भगवान ने पूछा कि क्या दे दी गई गाय? तो नहीं, वो तो बलात् ले गया, बस इतना ही, बस अपराध का बहाना करना था भगवान को। और तो चुक्रोध अही दिवा आहत, जैसे कोई सर्प को पैर से मार दे या डंडा से मार दे और फुफकारने लगता है, इतना सुनते ही कि वो गाय ले गया है, भगवान परशुराम पूर्ण उग्र काल जैसा हो गए, भयानक लंबी लंबी सांस चलने लगी और उन्होंने तुरंत ही तूण बांधा, तरकस बांधा अपने शरीर पर, और मृगचर्म पहने थे, कपड़े की व्यवस्था नहीं रहती थी वन में, मृगचर्म धारण करते थे, ब्राह्मण थे, और एक मृगचर्म ऊपर लपेटे थे, एक पहने थे, और इनकी जटाएं सूरज की किरणों जैसे चमक रही थी। बहुत क्रोधित हो गए और हाथ में परशु लिए, घोरम आदाय परशुम सतूणम चर्म कार्मकम अन्वधावत दुर्धर्षो मृगेन्द्र ज्योथपम। महाभयानक परशु अपने हाथ में लिए और चर्म ढाल लिए तथा धनुष बाण, बाण को तरकस में रखे, कार्मुकम धनुष को लिए और अन्वधावत वे बहुत तेज गति से दौड़ करके गए। अरे भगवान को क्या भय हो सकता है, उनके आगे सहस्रार्जुन क्या है, अकेले दौड़ करके गए। कहां जा रहे, उसके नगर में माहिष्मतिपुर की तरफ गए। अन्व धावत दुर्धर्ष और मृगेंद्र और युद्धपम, क्योंकि दुर्धर्ष है, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उनको अभिभूत नहीं कर सकता है भगवान को। जैसे किसी गजेंद्र का पीछा करे कोई सिंह, इस तरह से निर्भय हुए पीछा किए बहुत तेज गति से दौड़ करके। वन में किसी गजेंद्र को मारने के लिए, पकड़ने के लिए सिंह दौड़ता है, तो सुखदेव गोस्वामी इन दृश्यों को देखे होंगे दौड़ते हुए। बहुत तेज गति से सिंह है, छलांग मारता है जाता। तो भगवान परशुराम बहुत तेज गति से जा रहे थे दौड़ते, इसलिए अन्व धावत शब्द का प्रयोग किया, अनु अधावत दौड़े। लेकिन जाते जाते वो अपने नगर के पास पहुंच चुका था, प्रवेश कर रहा था वो सहस्रार्जुन। तमा पतंतम भृगुवर्ज मोजसा धनुर्धरम बाण परस्वधायुधम आयणेय चर्मांबर मर्क धाम भीर्जुतम जटाभिर्ददृशे पुरीं विशन। पुरीं विशन, राजा सहस्रार्जुन पुरी में प्रवेश कर रहा था अपनी राजधानी में। भगवान परशुराम की निर्भयता देखिए, एक सम्राट की राजधानी में जा रहे हैं वो गाय लाने के लिए। भगवान तो ये बहाना बना रहे हैं कि मैं गाय लेने जा रहा, और वास्तव में यदि कामधेनु को दे करके और सहस्रार्जुन चरण में गिर गया होता तो भगवान उसे मारे नहीं होते। लेकिन अब उसको तो मरना था, उस दिन लिखा हुआ था, तो करे क्या। तो उसने देखा भगवान परशुराम को, कैसा देखा, आपतंतम, बहुत वेग से आक्रमण के मूड में आ रहा है, मुझसे लड़ने आ रहा है। भृगुवर्जम, भृगुवंश शिरोमणि, और यह भी देखा धनुर्धरम, धनुष लिया है, बाण परस्वधायुधम, और इसके पास परशुराम जी के पास बाण और परस्वत यही दो आयुध थे। अयणे चर्मांबरम, और मृग का चर्म ही वस्त्र था उनके लिए। उसने ध्यान दिया कि इसकी वेशभूषा, वस्त्र तो ब्राह्मण का है, तपस्वी का है, लेकिन हाथ में तलवार ढाल ये सब लिया। उसने किसी ब्राह्मण को इस रूप में कभी नहीं देखा था, वेश तपस्वी का और हथियार क्षत्रिय का है, ऐसा उसने देखा नहीं था। इसलिए उसको ये कोई शंका नहीं थी कि कोई आएगा हमसे खतरा करेगा, ये करेगा। तो यहां भृगुवर्जम शब्द का यह तात्पर्य है कि वो पहचान गया कि ये जमदग्नि का पुत्र है। उसने सुना था राम के विषय में, भगवान परशुराम के विषय में, तो समझ गया कि बस बस वही आ रहा है। लेकिन यह नहीं जानता था कि परशुराम इतना खतरनाक है, क्योंकि इसके पहले भगवान किसी का वध नहीं किए थे, पहले तो तपस्वी के रूप में रहते थे। यही एक कारण मिला अब क्षत्रियों के विनाश का। तो देखा कि इसके पास बाण है और परशु और ऐणे चर्मांबर, ईण कहते हैं मृग को, ऐणे का अर्थ है मृग का चर्म, अंबरम जस, मृग का चर्म पहना है, और जटाभीर अर्क धामभीर जूतन। भगवान परशुराम की जटाएं कैसे थी, सूरज जैसी चमक रही थी जटा, एक तो जटा बहुत बड़ी थी और सूरज जैसी जटाएं चमक रही थी। जटा भी बहुवचन में अनेक जटाएं हो गई थी, जट का जटिल, फंस गए थे केस, कभी कंघी नहीं करते हैं तपस्वी लोग ब्राह्मण। और यदि केस में बहुत धूल पड़ जाए, राख पड़ जाए, जू लग जाए, तो बेटर है कि सेविंग करके फेंकते, इतनी गंदगी सिर पर क्यों ढोया करेंगे। परंतु पहले के ऋषि मुनि वन में रहते थे, नहाते थे तीन तीन बार, तो केस उलझ जाता था, जटाएं बन जाती थी, और वहां वो उधर कोई सुपर मार्केट और सैलून नहीं रहता था कि जाकर के बना लो, इसलिए जटा धारण करते थे स्वाभाविक। जटा से भगवान परशुराम बहुत सुंदर लग रहे हैं। तपस्वी की सुंदरता तपस्वी के वेश से होती है। कुछ लोग केश रख करके सुंदर लगते हैं, लेकिन भक्त लोग केश मुड़वा देते हैं तो उनसे भी सुंदर लगते हैं। और जबकि लोक में केश तब मुड़वाते हैं जब कोई घर में मर जाता है। अब तो वो भी नहीं कुछ लोग कर रहे हैं। मरे चाहे जिए कुछ भी हो अपना केश नहीं कटेगा। भगवान परशुराम जी की जटा का वर्णन किया जा रहा है कि अर्क धाम भी। धाम का अर्थ प्रकाश तेज, अर्क का अर्थ सूर्य। सूर्य के प्रकाश के समान जटाएं चमक रही थी। तो ऐसे प्रभु को भगवान को वीर वेश में सहस्रार्जुन ने देखा तो देखा तो यही उस कर्तव्य देखा उसका कि तुरंत माफी मांग लेता कि गलती हुई, मैं नहीं समझा कि आप इतने वीर हैं, ये हैं वो हैं। अभी वो नहीं समझ रहा था भगवान की वीरता को, भगवान के अशेष बल। उस मूर्ख को यह अभी पता नहीं था कि जिस प्रभु ने हमको ये बाह दिया है, बल दिया, वही अब आ गए मारने के लिए। बहुत अवसर भगवान देते हैं संभलने का, लेकिन संभला नहीं। अग्नि शक्ति भी अक्षौहिणी सप्त दशात भी सराहा तारा मय को भगवान सूर्य। तो उसने प्रेरित किया तुरंत आरस की सत अग्नि शक्ति भी अक्षौहिणी सप्त दशात भी सराहा तारा मय को भगवान सूर्य। तो उसने प्रेरित किया तुरंत ही वाकी टाकी से बोला होगा सेनापति को। तुरंत बोला होगा खतरा हो गया, अलर्ट हो जाओ, एक खूंखार ब्राह्मण आ गया। और ये सेना 17 अक्षौणी सेना तैयार करके और लड़ो इसके साथ। और वो आया होगा गया ना गया। तो सप्तदश अक्षौणी सेना को भेजा। हस्ती अश्व रथ और पत्ती चतुरंगिणी सेना, हाथी पर सवार, घोड़ों पर सवार, रथों पर सवार तथा पत्ती भी पैदल चलने वाले सैनिक। इसके चार अंग वाली सेना को चतुरंगिणी, चतुरंगिणी चतुरंगिणी सेना। एक अक्षौहिणी में कितने सेना, कितने सैनिक होते हैं, कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने रथ, ये सब वर्णन प्रथम स्कंध की टीका में ही आ चुका है। इन सैनिकों के पास बाण, गदा, खड़ग, रिष्टि, शतघ्नि आदि थी। बहुत से हथियार लेकर के युद्ध करने के लिए आए। और राम एक हत्ता अशुद्ध, श्री परशुराम जी अकेले असहाय, कोई दूसरा साथी नहीं था। 11 अक्षौणी सेना को उन्होंने कुछ ही समय में समाप्त कर दिया, क्षण भर में समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान, यहां भगवान शब्द दिया गया, भगवान है अनंत बल के आश्रय, इनके लिए कौन आश्चर्य की बात है। 17 अक्षौणी सेना क्षण भर में धराशायी हो। इसी का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कुछ विस्तार से करते हैं। जतो जतो सौ प्रहरत परस्वधो मनो निलौजा पर चक्र सुदन ततस ततस छिन्न भुजो रुकंधरा निपेत दुर्द्याम हत सुत वाहना। भगवान है परशुराम का वेग मन और वायु के समान था। मन जैसे एक सेकेंड में करोड़ों जोजन जा सकता है, वैसे वे इतना फुर्तीला थे, इतना फुर्तीला थे कि एक सेकेंड में ही करोड़ों सैनिकों को मार सकते। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जहां जहां वे चलाते थे अपने परसे को, वहां चलाते समय दिखाई नहीं पड़ता था कि कैसे चला रहे हैं। केवल वीरों की भुजाएं और पैर मस्तक कटते हुए गिरते हुए केवल दिखाई देते थे, और परसु चलते हुए नहीं कोई देख पाता था। मन के वेग से और वायु के वेग से चलता था। सुखदेव गोस्वामी यह ध्यान दे रहे हैं कि सहस्रार्जुन देख रहा है कि धड़धड़ धड़धड़ एक दिशा से मस्तक बाह सब कट कट करते गिर रहे। जो मन के वेग से चल रहा है परसु, तो केवल कटते हुए ही दिखाई देगा। हाथी गिर रहे हैं, घोड़े गिर रहे हैं, सैनिक कट करके गिर रहे हैं, और गिर करके अंत में उसने देखा कि सब धिरोग कर्द में इतना खून का रक्त का ओघ समूह हुआ कि सब कीचड़ में खून के कीचड़ में दब गए, क्षण भर में समाप्त हो। इसको कहते हैं भगवान। यद्यपि भगवान के ये पूर्ण बल का प्रकाशन नहीं है, उनके स्वल्प बल का भी प्रकाशन नहीं, इसको तो एक मनुष्य के शब्दों में वर्णन किया जाता है, हो परशुराम जी में बहुत बड़ा बल है, ये क्या बल है, उनके तो भ्रिकुटी पलटते ही विश्व नष्ट हो सकता है, ये कौन सा बहुत बड़ा बल है। क्षण भर में भगवान ने सबको समाप्त कर दिया। जिधर जिधर चलता था ततस ततस छिन्न भुजो रुकंधरा निपेत रुद्यम हतसुत वाहन, सारथी मारे जाते थे, वाहन मारे जाते थे, रथ टूट जाते थे। तो भगवान परशुराम जी के लिए यहाँ कहा गया परचक्र सूदन, चक्र का अर्थ सेना, शत्रुओं की सेना का सेना के विनाशक भगवान परशुराम जी। प्रहरत परस्वत, यह भी परशुराम जी का एक विशेषण है, प्रहरत प्रहार करते हुए परशु को धारण करने वाले। उस समय परशु ऐसे दिखाई दे रहा था कि लगता था लगातार प्रहार ही हो रहा है, और हाथ से कभी कभी छोड़ करके भगवान परशुराम जी मारते थे, ऐसे चला दिए कुल्हाड़ी तो एक बार में लाखों लोग गिर जाते थे, मर जाते थे, हाथी घोड़े सब, और उधर चलाए तो इधर लाखों गिरे, उधर मारे, उधर गिरे, उधर गिरे, और ज्यादा तो ये हाथ में ले करके मारे। मैं तो एक कविता में कह रहा हूँ कि चला दिए ऐसे हाथ छोड़ करके, लेकिन हाथ छोड़ करके नहीं चला, इतना वेग था वायु के समान, मन के समान कि मारते थे, काटते थे क्षण क्षण में, और इस तरह से सबको खून के कीचड़ में गिरा दिए। और वो तब तक नहा धोआ करके आ करके ऊपर अट्टालिका पर चढ़ करके देख रहा था। दृष्ट्वा स्वसैन्यम रुधिर औघ कर्दमे रणा जिरे राम कुठार साय कहीं विवृक्र चर्म ध्वज चाप विग्रहम निपातितम है आप तदरुषा। तो उस है वंशी उस जादव ने देखा कि उसकी सेनाएं रुधिरोग कर्द में निपातित, परशुराम के द्वारा उसकी सारी सेना रक्त के कीचड़ में सान दी गई, डाल दी गई। कैसे? राम कुठार साय कही, राम के कुल्हाड़ी से और बाणों से वो सेना रुधिर कर्दम में डाल दी गई, रणभूमि में। विवृक्र चर्म ध्वज चाप विग्रह, सबके चर्म ढाल कट गए थे सैनिकों के, और ध्वज धनुष और विग्रह, विग्रह माने शरीर, सबके शरीर खंड खंड होकर के मरे थे। ऐसा नहीं कि कहीं चोट किया गया और शरीर रह गया, सबका शरीर विवृक्र कट गया था और इस तरह से गिरा दिया। अच्छा, इस पर भी चांस था कि जब देखा कि सारी सेना मार दी गई, तब तो विवेक होना चाहिए था कि ओ ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तो अब तो आकर के चरण में गिरना चाहिए था, लेकिन वो चरण में कैसे गिरे, अभी जो मरण में गिरने वाला था चरण में कैसे गिरे। वह स्वयं युद्ध करने आया भगवान परशुराम के साथ। अथार्जुन पंच शते सुबाहु भी धनु सुपाणान जुगपत ससंदधे, तो सहस्र बाहु अर्जुन 500 धनुष एक साथ चढ़ाया, क्योंकि 1000 बाह थी और दो दो बाह से एक एक धनुष चढ़ाया, 500 धनुष एक साथ और एक एक धनुष पर कई कई बाण भगवान राम के लिए उसने चलाया। रामाय रामोस्त्र भीताम समग्रणी तानेक धन्वे सुभिरा छिनत समय, भगवान परशुराम के लिए जो ही उसने बाण चढ़ाया और 1000 धनुष, तो अस्त्रधारियों में अग्रणी भगवान परशुराम ने अपने बाणों से उसके सारे धनुष को और बाण को काट दिया। तो जब जब धनुष धारण, दूसरा भी धनुष धारण किया और धनुष को काट दिया, बाण को काट दिया। समम ईसु भी समम, समम कार्य अपने बाणों से काट दिया। मैं ईसु भी समम कार्य उसके बाणों के साथ ही धनुष को काट दिया। 500 धनुष बेकार गया, फिर कुछ बचा होगा उसको भी काटा, बाणों को काटा। जब उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रह गया तब अपने हाथों से पहाड़ उठा उठाकर फेंकना चालू। बहुत विशाल भुजाएं थे, अचलन और अंग्रिपान, बहुत वेग से पहाड़ उठाया। किसी किसी हाथ में पहाड़ उठाया था, किसी में वृक्ष उखाड़ा ले चला मारने के लिए। अभी भाव तो जो बहुत वेग से चला परशुराम जी को मारने के लिए, लेकिन भुजान कुठारण कठोर नेमिना चिच्छेद रामा प्रसभम तो हेरियो, अपनी कठोर धार वाले परशु से भगवान ने उसकी भुजाओं को काटना चालू किया। तो पहाड़ आदि को तो चूर्ण कर ही दिया, पर्वत शिखर को और वृक्षों को काट दिया, अब उसकी भुजाओं को काटना चालू किया। बहुत शीघ्र ही काट दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा परशु बिलो की महित कुमार। लक्ष्मण जी को दिखाते हुए भगवान परशुराम जी कहते, देखते हो कौन परशु है, इसी से सहस्र बाहु की भुजा को काटा। हजार भुजा वाले को काटते तो देर नहीं लगी, ये दो भुजा काटने में क्या देर लगी। अभी मार दूंगा बोलती बंद हो जाएगी, फटफट बोल रहे हैं, इस तरह से डांट रहे थे। तो सहस्रार्जुन की 1000 भुजाओं को भगवान काट दिया। प्रसभम त्वहेरिव, जैसे कोई सांप को काटे उस तरह से उसकी भुजाएं क्रोध में उठ रही थी। पहाड़ उठाना चाहता था, वृक्ष उठाना चाहता था, देर से दौड़कर आ रहा था, लेकिन भुजा को काट दी। और सारी भुजाओं को जब काट दिए तो इसके बाद भगवान ने मारा परशु से उसका पर्वत के शिखर के समान सिर कट करके गिर गए। न जोश, भगवान एक क्रोध का नाटक कर रहे थे। भगवान में तमोगुण कभी नहीं आ सकता, लगता था कि पूर्ण क्रोध में हो गए हैं और पूर्ण स्फूर्ति के साथ सिर काट दिए। जब सिर कट करके गिरा एक पर्वत शिखर के समान ढाह से आवाज करके, तो उसके 10,000 पुत्र जो युद्ध में खड़े थे वे सब भाग चले डर करके। जब पिता इतना बड़ा धुरंधर क्षत्रिय मर गया, कट गया मस्तक, तो सब एकाएक भागे कि अब नहीं बचेंगे, अब कोई नहीं बचेगा। 10,000 पुत्र भाग गए। कृत बाहो शिरस्तस्य गिरे श्रृंगमिवाहरत हते पितरि तत्पुत्र ऐतम दुद्रूर भयात। जब इतना भीषण पिता मारा गया तब लड़कों की टांग छूटी, अब वो युद्ध नहीं कर सके, भागे कि बाप रे बाप। जब यहाँ खड़ा रहने का मतलब है कि मौत का आलिंगन कर, सब भाग चलो। यदि युद्ध में भागने वाले नहीं थे, लेकिन अब क्या करें, मरने के लिए थोड़े खड़े रहे। अग्निहोत्रीम उपावर्त्य सवत्साम पर भी रहा समुपेत्या श्रम पित्रे परिक्लिष्टाम समर्पयत। और जब लड़के राजधानी छोड़ करके भाग गए और सैनिक तो रणांगण में रुधिरौ कर्दम में सब सम गए, समाप्त हो गए, और राजा समाप्त हो ही गए, तो भगवान परशुराम जी गए जहाँ गाय बांधी गई थी, उसको खोल करके ले करके चले और ले करके आया और बांधे। हो गया काम, जय श्री राम। अग्निहोत्री मुपावर, अग्निहोत्री को लेकर के और भगवान अपने आश्रम पर आए। सवत्सा पर भी रहा, शत्रुओं को मारने में परम प्रवीण भगवान परशुराम आए, बछड़े के साथ, वत्स के साथ आए और अर्पित किए। समुपेत आश्रम पितर परिकृष्टम समर्पित। वो गाय जा नहीं रही थी, बहुत दुखी थी, तो उसको मारते हुए वो लोग ले गए थे, वे कसाई लोग। उसको बड़े कष्ट से पगहा में खींचते हुए ले गए थे, तो परिक्लिष्टा थी। और वहां पहुंचने के बाद अभी तो रास्ते में ही गए थे, भोजन भी नहीं मिला था उसको, तो ऐसी गाय को लाकर समर्पित अर्पित किया अपने पिताजी को। लीजिए इस गाय को, गवत डाला जाए, इसकी सेवा की। और अब तक भाइयों को और पिता को ये पता नहीं है कि लाखों हत्या करके गाय लाया है। वो लोग तो खुश हुए कि गाय आ गई, लेकिन पूछे वे लोग कि कैसे गाय लाए, तो खूब अपनी बड़ाई करते हुए भगवान परशुराम का, ऐसे मारा उसको, ऐसे मारा, ये मारा। वो जो आया था सहस्त्रबाहु, जो गाय ले गया था, उसको समाप्त करके आया। इस तरह से अपने कर्म को, स्वकर्म तत्कृतम मा राम पित्रे धातृ भैये वच, अपना कर्म और उसका कर्म को किस तरह से युद्ध करने आया, ये किया वो किया, अपने भाइयों से और अपने पिता से सब कह दिए, वर्णयामाश वर्णन किए। जब राजा के वध का वर्णन सुने जमदग्नि जी, तो वे तो बहुत दुखित हुए। जमदग्नि जी ने कहा, राम राम महाबाहो भवान पापम अकार्ष, हे राम हे राम, तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। यह क्या किया, क्यों तुमने राजा का वध किया? भगवान परशुराम जी तो आत्म प्रशंसा कर रहे थे और उन्होंने सोचा था कि हमारे पिताजी कहेंगे बहुत अच्छा किया, और जाओ मारो। कभी कभी लोग इस तरह की बात बोलते हैं, इतना ही मारा, और मारना चाहिए, इतना ही किया। लेकिन ये वास्तविक ब्राह्मण थे जमदग्नि जी। देखिए कि गुणवान ब्राह्मण के उद्गार दिए जा रहे हैं। महाराज सहस्रार्जुन के दोषों पर जमदग्नि जी कुछ भी विचार नहीं कर रहे। उन्होंने सोचा भी नहीं कि वे मेरा अपराध किए, गाय ले गए। तो तब उनके मन में यह विचार आया कि राजा है, राजा के पास एक गुणवती गाय रहे, कोई बात नहीं, वे बहुत दुखी नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि बिना अपराध के ही राजा का वध कर दिया गया, तो बहुत दुखित हुए और कहने लगे, हे राम भवान पापम अकार्ष, आपके द्वारा पाप हो गया, तुमने बहुत बड़ा पाप किया। अवबधित नरदेवम जत सर्व देवमयम वृत, तुम्हें पता है देव राजा के शरीर में सभी देवता रहते हैं, और ऐसे राजा का तुमने वध किया, बहुत बड़ा पाप किया। देवताओं में अलग अलग शक्ति है, कोई देवता प्रकाश दे रहा है, कोई देवता पानी बरसाता है, कोई देवता फसलों को पोषता है जैसे चंद्रमा, कोई देवता सांस लेने की सुविधा दे रहा है, कोई देवता अन्न उत्पन्न कर रहा है, लेकिन सरकार या राजा तो सब दे रहा है। बिजली दे रहा है तो सूर्य का काम कर रहा है, राजा बिजली दे रहा है या किरोसिन तेल दे रहा है, डीजल दे रहा है, तो ये सूर्य भगवान का कुछ काम कर रहा है, और पानी दे रहा है तो इंद्र भगवान का काम कर रहा है नहर के द्वारा, और भी कई प्रकार से फसल उत्पन्न करने में सहायता करना है और करना है, ये राजा सहायता करता है। मैं वर्तमान राजा की बात नहीं कर रहा हूं जो जो अन्न को इतना सस्ता कर दिए, पहले के राजा ऐसे होते थे, उनका वर्णन कर रहा था। उस राजा में सभी देवता रहते, सभी देवता पालन करते हैं मिल करके जनता का, तो राजा अकेले ही सभी देवताओं का कार्य करता है, देखा जाता है संसार में। तो राजा का तुमने वध किया, तो इस प्रकार से समस्त देवताओं का पुरस्कार किया। अब के राजा लोग, अब की सरकार तो केवल इसी फेर में है कि कैसे टैक्स बांधा जाए, कहां कहां से कर लगाया जाए, इस काम में बहुत एक्सपर्ट है, कर संग्रह करना। भागवत में लिखा गया है कि कलयुग में लोगों पर इतना कर लगेगा और बारंबार दुर्भिक्ष पड़ेगा कि जनता बहुत दुखित हो जाएगी और वन में पहाड़ में छिप करके गुजारा करेगी, किसी भी बात पर टैक्स। अब घर गिन रहे हैं किसके पास कितना घर है, तो घर पर टैक्स लगाओ, इस पर टैक्स लगाओ, बकरी पर टैक्स लगाओ। उनको ये पता नहीं कि कितने कष्ट से, कितना दुख से सब चल रही है गृहस्थी, बस उनके हाथों में फोन है, इधर से ये करो ये करो वो करो वो करो करते रहते। यहाँ जमदग्नि जी जो राजा के विषय में कह रहे हैं सर्व देवमयम नरदेवम, सभी देवता राजा के शरीर में रहते हैं, यह बात बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। पहले के राजा ऐसे होते थे। इस प्रकार तुमने राजा का वध करके समस्त देवताओं का वध किया है, अपमान किया है, यह बहुत बड़ा पाप हुआ। और अपने स्वभाव के विषय में कहते हैं कि हे तात, हे प्रिय परशुराम, वयम ही ब्राह्मणास्तात, हे तात हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमया अर्हणताम गता, सब कुछ सहन करने के कारण ही हम लोग पूज्य इस संसार में, हम लोग पूज्यता को प्राप्त हुए हैं, लोक में हमारी पूजा होती है, हमारा आदर होता है, जानते हो क्यों? क्योंकि हम सहन करते हैं, सहन करने के कारण, शीत सहन करते हैं, घाम सहन करते हैं, तप करते हैं, वेद पढ़ते हैं, इंद्रिय निग्रह करते हैं, किसी से कलह नहीं करते, विवाद नहीं करते, और दूसरे के द्वारा किए गए दिए गए दुख को सहते, इसी से हम लोग पूज्य। इसके द्वारा जमदग्नि जी यह भी मानो कह रहे हैं कि वही पूज्य है जो इस जगत में व्यक्ति है ब्राह्मण जो सहन करता है, सह करके चाहे प्राकृतिक उपद्रव दुख है या मनुष्यों के द्वारा दिया गया दुख या पशु पक्षी के द्वारा दिया गया दुख, सबके अतिक्रम को सह करके हम लोग भगवान का भजन करते हैं, इसीलिए हम लोग पूज्य, इसीलिए जगत के लोग हम लोगों का सम्मान करते हैं। जया लोक गुरु देव पार मेष्ठ मगात पदल, इसी सहनशीलता के कारण ब्रह्मा जी इस विश्व में सबसे श्रेष्ठ पद पर हैं। श्रेष्ठ पद पर ब्रह्मा जी हैं, ये स्पिरिचुअल पावर है। आपने सुना होगा कथा के शुरू में कि वे सोम को आकर के डांटे, भर्त्सना किए, तो युद्ध रुक गया। इसके बाद उन्होंने सौंपा उस बच्चे को सोम के लिए, बृहस्पति जी को समझाया। वे विश्व गुरु हैं, सबसे श्रेष्ठ पद पर हैं। नारद जी, शनकादि, भगवान शिव उनके चरणों की वंदना करते हैं और भगवान के प्रिय हैं, क्योंकि वे सहन करते हैं। ब्रह्मा जी को कभी नहीं देखा गया कि वे किसी युद्ध में भाग लिए और हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिए। शिव जी त्रिशूल लिए हैं, भगवान तो गदा और चक्र आदि लिए रहते हैं, तो चक्र और गदा लेकर के दूसरों को मारेंगे ना, ऐसे शौक से तो कोई वो आभूषण तो है नहीं, वो तो आयुध है। तो भगवान को देखा गया है कि वे मारते और शिव जी भी मारते, इंद्र भी वज्र धारण करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी हाथ में वेद लिए रहते हैं और चार मुख हैं, लेकिन एक मुख से आज तक किसी को गाली नहीं दिया है, केवल वेद मंत्र बोलते रहते। तो इस कारण से ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ पद पर, सबसे पूज्य है। लोक गुरु का अर्थ पूज्य ब्रह्मा, परमेष्ठे मगात पदम, परमेष्ठी पद पर है। ब्रह्मा जी का जो स्थान है इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, यहां तक कि मैनेजर में भी वो सबसे श्रेष्ठ मैनेजर है। भगवान ने उनको ही सौंपा है कि तुम इस विश्व को देखा करो, इसको संभाल करके रखो। और ब्रह्मा जी सब अतिक्रम सहते हैं, कभी किसी पर क्रोध नहीं करते, किसी को मारते नहीं, इस कारण से पूज्य है। नहीं ब्रह्मा जी भी जिस दिन तलवार उठा लेंगे तो उनको भी कोई नहीं पूछेगा, जो जैसा है उसी में रहने से उसकी पूजा होती है। साधु है तो साधु रहे, गृहस्थ है, पत्नी वाला है तो घर का काम धंधा ठीक से करे, भगवान का भजन करे, लेकिन सहनशीलता की बात कही जा रही है तो ये ब्राह्मण के लिए विशेष आवश्यक है, सहन करना। ऐसा नहीं कि कोई हमको एक वाक्य बोल दिया तो हम दो वाक्य उसको प्रतिदान में बोल रहे हैं, हम नहीं सह सकते, हम ऐसे नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये सहन करना कायरों का काम है, महाराज युधिष्ठिर भी सहन करने वाले थे, ऐसे पुरुष थे, तो उनको उनके भाई ही कहते थे, आप तो ब्राह्मण है, आप तो क्षत्रिय है ही, तुम्हारा युधिष्ठिर का एक प्रकार से अपमान किया। अर्जुन ने एक बार उनका अपमान किया और कह दिया कि आप क्या कहेंगे कि मैं गांडीव धनुष किसी को दे दूं। गांडीव ऐसा भले भीम कह सकते हैं, भीमसेन कह सकते हैं, क्योंकि वे बलवान है, और आप क्या, आपको कौन क्षत्रिय कहते हैं, ब्राह्मण कहेंगे, ऐसा वो बोले। इस पर महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखित हो गए कि हमको ब्राह्मण कहा जा रहा है, और अब के लोग तो ब्राह्मण कहलाने के लिए उत्सुक, कब हमको ब्राह्मण कहा जाए, कब ब्राह्मण कहा। तो ब्राह्मण कहलाने के लिए नहीं, रियल ब्राह्मण बनने के लिए उत्सुक रहने से, वास्तव में हम किसी के द्वारा किए गए अपमान को सह सके, किसी के द्वारा किए गए अनिष्ट को सह सके, तब सच्चा ब्राह्मण। तो ब्रह्मा जी ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ हैं, और आज तक आप पता लगा लीजिए वैदिक इतिहास के पन्नों में किसी को एक थप्पड़ नहीं मारे हैं, लेकिन उनके बाद जो पुत्र हुए जैसे शिव जी आदि, कितने लोगों को मारे हैं और प्रलय में ध्वस्त करते हैं, उसकी संख्या ही नहीं की जा सकती। जब भृगु जी प्रणाम नहीं किए शिव जी को, तो भृगु जी की जान मारने के लिए त्रिशूल उठाएंगे। ये भागवत में कथा है। ऐसे सहन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ भगवान है। उनके वक्षस्थल में भृगु जी ने मारा, लेकिन भगवान उनके चरण को सहलाने लगे। तो ब्राह्मण की शोभा सहनशीलता में है। कहते क्षमया रोचते लक्ष्मी ब्राह्मी शौरी जथा प्रभा। क्षमया सहनशीलता से ब्राह्मण का तेज बढ़ता है, और कितना बढ़ता है, जैसे शौरी प्रभा, सौर सूर्य का अर्थ है सूर्य, सूर्य की जैसी चमक है, क्षमा करने वाला सहन करने वाला ब्राह्मण सूर्य जैसा चमकने लगता है। ये ब्राह्मण के तेज बढ़ने की विधि है। शौरी जथा प्रभा, जैसे शौरी प्रभा सूर्य की प्रभा, ऐसा सहन करने से ब्राह्मण तेजस्वी होता है। सब कुछ सहन करना, जैसे एकादशी के दिन मान लीजिए प्रसाद नहीं मिला है, फिर भी आनंद से सहना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये भी सहना है। इस प्रसाद मिलने में अगर विलंब हो जाए तो उसे सह ले तो वो ब्राह्मण है, और नहीं प्रसाद देने वालों पर ही मन क्रोध कर रहा हो, क्या देर हो रही है, ये हो रहा है, तो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण तो है, मिला मिला नहीं मिला फिर भी ठीक संतुष्ट। भगवान ने वामन देव ने भी कहा है कि संतुष्ट ब्राह्मण का तेज बढ़ता है। स्वयं ही ब्राह्मण बनकर महाराज बलि के पास गए और भिक्षा मांग रहे थे, उसी समय भगवान ने प्रवचन किया। जमदग्नि जी के इस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए सबके लिए। अच्छा, यह शिक्षा केवल इस पर इसको मान करके इसको नहीं छोड़ देना चाहिए कि हाँ ये ब्राह्मणों के लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो केवल कटार उठा लेना है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यह ब्राह्मण का मतलब है बिल्कुल शुद्ध व्यक्ति, अच्छा आदमी। क्षमया रोचते लक्ष्मी ब्राह्मी शौरी जथा प्रभा। तो सहनशीलता होने से ब्राह्मण में एक तो तेज बढ़ता है, और सबसे बड़ा लाभ जीवन में क्या होता है कि क्षमिणाम आशु भगवान स्तुष्यते हरिश्वर। जो व्यक्ति सहन करता है वृक्ष की तरह इस संसार में, किसी को नुकसान नहीं करता, वचन से मन से शरीर से सह लेता है, तो उस पर भगवान ईश्वर हरि आशु तुष्यते तुरंत पवित्र हो जाते, तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। हरि ही ईश्वर भगवान तुष्य, हरि का अर्थ है भक्त दुख हरता, ईश्वर का अर्थ है सर्व नियंता, और भगवान का अर्थ है परम सुंदर दयालु। दयालु भगवान उस व्यक्ति पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो सहन करता है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु आकर सिखाए करो रिव सहिष्णु में, वृक्ष की तरह सहिष्णु रहना चाहिए भक्त को और कृष्ण का भजन करना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है कि भगवान हमारे कर्म से हम पर प्रसन्न हो जाए। जिस व्यक्ति पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए उसका जीवन वास्तव में व्यर्थ है। ये दुनिया भले प्रशंसा करे ये बहुत अच्छा व्यक्ति है अच्छा व्यक्ति है, लेकिन यदि भगवान नहीं कहे कि अच्छा है तो अच्छा नहीं। भगवान की नजर में भगवान की दृष्टि में हमें अच्छा होना चाहिए। तो जो व्यक्ति किसी के द्वारा किए गए अपराध को सह लेता है उसको उसके प्रति भगवान प्रसन्न होते हैं। आज के युग में तो बहुत प्रकार के प्रश्न होने लगते हैं, यदि क्षमा की बात कही है तो लोग इस शिक्षा को अपने पर न लेकर के कहते हैं तब तो सैनिक सब सहा करें और कश्मीर में उपद्रव चलता रहे। प्रश्न करने वाले समझते नहीं है कि क्या बात कही जा रही है। कुछ वर्ग विशेष ऐसा होता है, कुछ पंथ होते हैं, रास्ता होता है जिसमें सहनशीलता ठीक है। अपने पुत्र को एक ब्राह्मण शिक्षा दे रहा है जो एक राजा की हत्या करके आया है, लाखों सैनिकों का वध करके आया है और बिना अपराध के उसको शिक्षा दी जा रही है कि ब्राह्मण को क्षमा करनी चाहिए। तो इसे हमें यह नहीं सीख लेना चाहिए कि तब क्षत्रिय को भी क्षमा करनी चाहिए और सैनिकों को भी नहीं। वहां तो अगर क्षमा कर रहा हो सह रहा हो तो उसे तो अर्जुन की तरह ललकार कर कहा जा सकता है कि लड़ो जैसे भगवान ने कहा। अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने कहा युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, हिमालय में कमंडल उठा करके चलना तुम्हारे लिए अधर्म है, तुम युद्ध करो इसी में तुम्हारी शोभा है। और अर्जुन ने किया। तो इस तरह से अर्जुन ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है, भगवान के प्रिय है। हमें सब मिलाकर के भगवान को प्रसन्न करना है, जिस बात से भगवान प्रसन्न हो वही करना चाहिए। ब्राह्मण पर भगवान प्रसन्न होते हैं सब कुछ सहने से, किसी को दुख न देना सह लेना, अपना कर्म फल मान करके चुपचाप सह लेना। राग्यो मूर्धा विषिक्तस्य बधो ब्रह्म बधात गुरुः तीर्थ संसेवया चांगो जह्यंगा चुचेतनः। मूर्धा विषिक्तस्य, जिस राजा का वेद विधि से राज्यासन पर अभिषेक हुआ है, इसका अर्थ है जो परंपरा से कुल परंपरा से और वेद विधि से राजा बना हुआ है, ऐसे राजा का वध ब्राह्मण के वध से भी अधिक महापाप है। लोक में ब्राह्मण का वध बहुत बड़ा पाप माना जाता है, परंतु ब्राह्मण के वध से भी बड़ा घातक है राजा का वध करना, क्योंकि एक राजा समस्त जनता का रक्षक होता है। जैसे पिता के बिना पुत्र दुखी हो जाते हैं, वैसे राजा के बिना वास्तव में प्रजा दुखी हो जाती है। कोई रक्षक न रहे तो कैसे कोई अपने स्वधर्म में रहेगा। मान लीजिए कि राजा देश की सीमा पर सैनिक खड़ा न करे और वहां सैनिक यदि तत्पर न रहे तो क्या हम लोग भागवत सत्ता कर सकते हैं कहीं बैठकर, या कोई भी व्यक्ति कहीं कोई काम नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, अराजकता छा जाती है। फिर अन्य राजा के आक्रमण की बात तो छोड़ दीजिए, यदि राजा न रहे तो वर्तमान समाज के ही आदमी एक दूसरे को लूटने लगेंगे, मारेंगे, काटेंगे। कभी कभी लोग कहते हैं ये थाना बेकार है, पुलिस स्टेशन बेकार है, ऐसा मैंने सुना है। कहते ये पुलिस बैठे बैठे खा रहे हैं, तो क्या जरूरत है, बैठे बैठे नहीं खा रहे हैं, वे थाना में है तब जा करके आदमी ठीक से रह रहे हैं। भय बना हुआ है कि अरे पुलिस स्टेशन है यहाँ, तो अपने घर में अपने कर्म में लगे हुए, तो उनका खड़ा रहना, उनका थाना में रहना ही पर्याप्त होता है। भय रहता है, तेज रहता है, चोर भी रुके रहते हैं, थमे रहते हैं, कोई किसी को सताता नहीं, मारता नहीं। लेकिन यदि राजा न रहे तो प्रजा ही प्रजा को खा जाएगी। इसलिए राजा का वध करना ब्राह्मण के वध से भी अधिक बुरा है। राज्ञो मूर्धाभिषिक्तस्य वधो ब्रह्मवधात् गुरु तीर्थ संसेवया चांगो जह्यंगाचित चेतन। लेकिन प्रश्न होता है कि जब पाप हो गया तो अब कैसे शुद्ध हो। राजा का तो वध हो गया, लाखों सैनिकों का वध कर दिया बिना अपराध के ही परशुराम जी ने। मानो पूछे कि पिताजी मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो पाऊंगा। उनके पिताजी बड़े स्नेह से कहते हैं, अंह जही इस पाप को धो डालो, समाप्त करो, अच्युत चेतन तीर्थ संसेवया। भगवान श्री कृष्ण में चित लगा करके उनका भजन करते हुए, भक्ति करते हुए और गंगा जी आदि तीर्थों में भ्रमण करो, स्नान करो, तब तुम्हारा पाप कटेगा। और वो भी एक दो दिन नहीं, एक वर्ष तक लगातार भूमि शयन करो और उपवास करो, भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, अच्युत का भजन करो और तीर्थ संसेवया, तीर्थ की संसेवा करो। तीर्थ की सम्यक सेवा के सेवन का यह अर्थ है कि तीर्थों में कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ नियम है। ऐसा नहीं केवल गया गोता मार दिया सारा पाप कट गया। तीर्थ है संसेवा, सम्यक सेवा। तीर्थ में कैसे रहना चाहिए, अपने हाथ पर पैर पर नियंत्रण रखे, पैर पर भी नियंत्रण रख। ये एक श्लोक में लिखा गया है यहाँ कि जस हस्तव च पादव च मनस चैव सुसंयतम, जिसका जिसके दोनों पैर और दोनों हाथ संयम में है। पैर का संयम क्या है तीर्थ में, तीर्थों में भी कुछ दोषपूर्ण स्थान रहते हैं वहां न जाए। सर नहीं बनारस में जाकर और सिनेमा में चला गया तो ये पैर का दोष है, पैर ले गया वहां। और पैर का एक और भी दोष है कि दूसरे का जूता पहनकर चल दिए कुंभ में। पैर को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, अथवा किसी को लात से मारने लगा। तीर्थ में अपने पैर को कंट्रोल में रखना है, हस्तव हाथ को कंट्रोल में रखना है। हाथ को कैसे कंट्रोल में रखेंगे, किसी पर प्रहार नहीं करना और किसी की वस्तु को चुराना नहीं, ये हाथ पर कंट्रोल रख। यदि सभी लोग तीर्थ में जा करके हाथ पर कंट्रोल कर लें तो किसी की एक भी वस्तु गायब नहीं है। हाथ नहीं छोड़ना और किसी की वस्तु को चुराना नहीं। इसके साथ साथ इंद्रियों पर निग्रह, वाणी पर निग्रह, किसी को वहां गाली नहीं देना, कठोर वचन नहीं बोलना। विद्या तपस्या कीर्ति सब तीर्थ फलम अश्नुते, पापम न कुरते जस्तु वांग मनोभ्याम शरीरतः यथा सत्या च दाने न सब तीर्थ फलम अश्नुते। इस संसेवया का जो व्यक्ति तीर्थ में पाप नहीं करता, मन से वचन से शरीर से और यथा शक्ति दान करता है सत्पात्र को, तो वही व्यक्ति तीर्थ का फल प्राप्त करते। तो जाओ तीर्थों में घूमो पुत्र और भगवान कृष्ण का भजन करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। अथवा इनका विशेषण ये संबोधन भी हो सकता है, अच्युत चेतना, जिसकी चेतना कभी च्युत नहीं हुई। भगवान परशुराम का विशेषण है, भगवान अपनी चित शक्ति में है, अपने स्वरूप में है, वध करने से क्या होगा। इतना वध करके भी भगवान परशुराम पाप से लिप्त नहीं है, अपने स्वरूप में है, अपनी सहज चित शक्ति से चेतना से युक्त है, अच्युत चेतना। लेकिन प्रसिद्ध अर्थ यही है कि भगवान श्री कृष्ण का विष्णु का भजन करते हुए चित लगा करके तीर्थ में घूमो, तीर्थ संसेवा करो और इस तरह से अंगम जही पाप को धो बहाओ। यह उपाय, पाप तो सबसे जान में अनजान में होता ही रहता है, तो बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि वो पाप को दूर करने की चेष्टा करे, नहीं तो ये पाप भविष्य में बहुत दुख देते हैं। जैसे हम लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, नहीं चाहते हैं कि शरीर गंदा हो जाता है, दांत गंदा हो जाता है, आंख गंदी हो जाती है, लेकिन स्नान करते हैं, धोते हैं, साफ कर लेते हैं। इसी तरह प्रतिदिन अपने को शुद्ध करना चाहिए, अपने को शुद्ध करने का सबसे बड़ा उपाय है कि प्रतिदिन भगवान के नाम का उच्चारण और श्रवण करना चाहिए तथा भगवान के विषय में कुछ सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। आत्मा को, मन को शुद्ध करने के लिए ही है उपाय। प्रतिदिन जल से स्नान करते हैं लेकिन झूठ बोल बोल करके और कई तरह से पाप चढ़ाते जाते, आत्मा को साफ नहीं करते। ये कहते थे, यहाँ पर एक व्यक्ति आए थे, कहते थे ऊपर साफ भीतर मैल कहे कबीरी का भाई। कोई भी उत्पटांग बात हो तो कबीरदास जी के नाम से वो चल सकते हैं। ऊपर तो साफ साफ है लेकिन मन में पाप वासना है, पाप दूसरे के धन को लेने की या दूसरे के सुविधा को छीनने की। तो ऊपर से बहुत बढ़िया से स्नान करके भी क्या होगा, पाप की शुद्धि होती है भगवान में चित लगाने से, भगवान का जप करने से, भक्ति करने से और गंगा जी का आश्रय लेने से। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है गंगा जी, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। आज भी हम लोग देखते हैं अनजान में किसी से गोबध हो जाता है, लांछन लग जाता है तो भेजा जाता है जाओ गंगा जी। पहले तो लोग पैदल जाते थे, अब तो ट्रेन से चले जाते हैं नहा लेते। अब घर पर गाय ही नहीं है, अब गोबध का पाप ही क्या लगेगा, अब तो पूरा निष्पाप होंगे। कसाई को गाय दे देते हैं, बैल दे देते हैं तो सोचते हम पाप नहीं कर रहे। अरे अनजान में किसी से गाय मर गई तो वो तो पाप रियली नहीं है, वो तो लोक दृष्टि से उस पाप का मार्जन कराया जाता है। लेकिन असली पाप तो है कसाई के पेट में गाय को दे देना। कुछ लोग बड़े चतुर बनते हैं, कहते नहीं हमने कसाई को नहीं बेचा है, हमने नेटवा को बेचा है, हमने उसको बेचा है, वो कहां ले जाएगा। जानता है वह आदमी ये घूम फिर करके ये भैंस ये गाय ये बैल कसाई खाना में जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत चतुर बन रहा है। तो याद रखना चाहिए कि भगवान धोखा में नहीं पड़ेंगे, धोखा में भगवान नहीं पड़ेंगे, सब याद है कि हम क्या किए। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं अब हमारे घर पर बड़ा दुख हो रहा है इस पशु को, इसीलिए हम सोचते हैं इसको बेच दें। तुमने उसका दूध खाया, तुमने उसे काम लिया, तुम सेवा नहीं कर सकते हो तो दूसरा बड़ा गोभक्त है सेवा करेगा ना, वही तो सेवा करेगा, कसाई खाना में काट कर खा जाएगा, बेच देगा। ये चलाक, ये चतुरता निकलती है, चतुराई अपनी बुद्धि लगाते हैं लोग। हम तो नहीं बेच रहे हैं कसाइयों को, हम तो दूसरे को बेच रहे हैं। 10 बरस दूध खा करके जिस गाय का या जिस बैल की कमाई खा करके हम उसको बेच रहे हैं तो केवल 6 महीना या 2 दिन या 1 साल तक उसकी कमाई खाने वाला व्यक्ति क्यों नहीं कसाई को बेच देगा, उसकी क्या ममता है। सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पाप से बचना है। तो गंगा जी की महिमा है, वास्तव में बड़े बड़े पाप को काट देती है। गंगा जी इस पृथ्वी पर नहीं आ रही थी, भगीरथ जी से उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर चलूंगी लेकिन मुझे 2 बात की चिंता है, एक तो मेरे देह को कोई धारण करने वाला होना चाहिए नहीं तो मैं रसातल चली जाऊंगी, और दूसरी बात है कि दुनिया भर के पापी आकर के अपना पाप मुझ में धोएंगे तो मैं मलिन हो जाऊंगी। पहला उपाय तो भगीरथ जी ने किया कि भगवान शिव को प्रसन्न किया, तो भगवान शिव गंगा जी के वेग को धारण करने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी बहुत फोर्स में गिरी ऊपर सत्य लोक से, तो भगवान शिव खड़े थे अपने जटा को फैला करके, ठीक है गंगा जी को धारण करना है। तो गंगा जी की वह विशाल जलराशि भगवान की जटाओं में ऐसे खो गई कि पता ही नहीं लगा कि इसमें कहीं पानी है कि नहीं है। लोग बताते हैं भगवान शिव जब जटा को गारे निचोड़े तब जाकर फिर ये धारा निकली, तो विनोद में सब बातें कही जाती हैं। और भगीरथ जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप में विश्व भर के लोग आकर के पाप धोएंगे तो आप मलिन हो जाएंगी, परंतु भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाले विष्णु भक्त जब आकर के आप में स्नान करेंगे तो वे आपका पाप धो देंगे। यह है शक्ति वैष्णव भगवान के भक्तों। तब गंगा जी आई। गंगा जी चाहती हैं कि भगवान कृष्ण के भक्त हम में स्नान करें, परंतु भक्तों को ये नहीं मान लेना चाहिए कि हम गंगा जी का पाप धोने जा रहे हैं। अपना ही पाप इतना ज्यादा है कि गंगा जी का पाप क्या धोएं। लेकिन कुछ ऐसे महान पुरुष हैं, वास्तव में वे गंगा जी में स्नान करते हैं तो गंगा जी की अशुद्धि भी दूर हो जाती है। तो गंगा जी का सेवन करने से अपराध कट जाता है और अच्युत चेतना, दो बात बताई जा रही है। तीर्थ सं सेवया, भगवान के धाम में वास करना, गंगा जी में नहाना। यह तीर्थ का मुख्य अर्थ होता है जल। जब तीर्थ बुद्धि सलिले न करिंचे, और तीर्थ का एक अर्थ वैष्णव भी होता है। भागवत में कई बार बात आई है, तीर्थ का अर्थ है पवित्र करने वाला, भगवान का भक्त। तो भगवान के भक्तों की सेवा करके और भगवान की सेवा करके, भगवान की भक्ति करके तुम इस पाप से मुक्त हो जाओ। पिता की आज्ञा मानकर भगवान परशुराम जी एक वर्ष तक भूमि शयन किए, उपवास किए, नाम मात्र कुछ खाते थे, फलाहार करते थे, वो भी मार्केट से खरीद करके नहीं। कहीं कोई देर फल मिल गया, सूखा रूखा सूखा पत्ता खाते थे, इसी से गुजारा की। और निरंतर जपते रहते थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब ऐसा लगा कि भगवान परशुराम जी बिल्कुल ब्राह्मण हो गए, अब हथियार लेकर नहीं चलते, अब माला लेकर चलते भजन करें। लेकिन उनका अवतार ही पृथ्वी का भार दूर करने के लिए हुआ था, और पिताजी आज्ञा दे दिए कि इधर कमंडल उठाओ। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी कि जो 10,000 लड़के बचे हुए थे सहस्रबाहु के, वे आकर के जमदग्नि जी का मस्तक काट कर ले। और भगवान परशुराम की माँ विलाप करने लगी, तब इन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अब एक भी क्षत्रिय छोड़ूंगा नहीं इस पृथ्वी। अब फिर कुल्हाड़ी उठा ली। एक राजा के वध का या कुछ सैनिकों के वध का प्रायश्चित किए थे तीर्थों में घूम। अब संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करने के लिए फिर हथियार उठा ली। भगवान की लीला अद्भुत है, सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए, और भगवान के चरणारविंद में भक्ति करनी चाहिए। भगवान का वह रूप है, 10 अवतारों में एक वंदना का विषय है, केशव धृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे, क्षत्रिय रुधिरमय जगदपगत पाप स्नपन समित भव पाप। क्षत्रियों के रुधिर में स्नान कराया। आगे कुछ अध्याय में गिनाया जाएगा कि हाय हाय कार्तवीर अर्जुन किसका पुत्र था। बहुत ही